السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام قرآن پارہ نمبر 13. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پیغام قرآن میں پارہ نمبر 13 کریں گے. سورۃ یوسف ہی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے اور لوگ حقیقت میں وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے ہوتے. اس بارے میں ہم سورۃ یوسف کا وہ حصہ پڑھیں گے کہ جس میں یوسف علیہ السلام اپنے نفس امارہ پہ قابو پاتے ہوئے اور محسن بننے کے ایک بہت ہی خوبصورت روپ میں دکھیں گے. بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا بننا جو آپ کے ساتھ برائی کر چکے ہوں، اور بہت آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا بننا جن کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ بھی نہ ہو یا بہت اچھے تعلقات ہوں. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے. اس سے پہلے ایک دفعہ سورۃ کا بنیادی جو تجزیہ تھا وہ دہرا لیتے ہیں. پہلی 6 آیات میں حضرت یوسف کا ایک خوبصورت خواب تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. پھر آیت 7 سے 18 میں برادران یوسف کی سازش تھی جو شیطان کے ورغلانے پہ ان سے ہو گئی. آیت 19 سے 34، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور وہاں ان پر کس قسم کی آزمائشیں آئیں اور کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، اسی کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح سے آیت 35 سے 53 میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے اللہ کے حکم سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہیں بھی دکھی نہیں دکھتے. ایمان والے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایون بظاہر لوگوں کو لگ بھی رہے ہوگا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی نجی زندگی کے مسائل ہو سکتے، لیکن اس کے چہرے کے اطمینان اور اس کی خوشی سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے اس غم کا. پھر 54 سے 57، حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، یہ حصہ آج ہم اب پڑھیں گے آگے اس بارے میں. پھر 58 سے 93 میں برادران یوسف دربار یوسف میں ہوں گے. اور آیت 54 سے 101، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی آمد مصر میں، کہ کیسے یہ پورے کا پورا خاندان مائگریٹ کر کے مصر میں پہنچ گیا. اور آیت 102 سے سورت کے اند تک 111، انسانوں کے اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کو ایمان والا کہتے تو ہیں لیکن کسی نہ کسی جگہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں آیات کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 62 تک، یعنی 58 سے 62 تک کا ٹاپک ہے برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری. 63 سے 66، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنجامین کو مصر بھیجنے پر رضامندی، یعنی کیسے وہ بھائی آ کر باپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تو لہٰذا اب ہمیں بھائی کو لے کے جانا پڑے گا، اور ہر ممکن کوشش کی انہوں نے کہ باپ کو تسلی دے دیں، کیونکہ اس دفعہ دل میں کوئی برا ارادہ نہیں تھا، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے کے لیے زیادہ کانفیڈنٹ محسوس ہو رہے تھے. اور واقعی پھر باپ کو یہی کہنے لگے کہ یا بانا ما نبغی ہاذہ بدعت ردت الینا، لہٰذا آپ کیا کیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے. پھر 67 سے 68 میں تدبیر اور تقدیر میں خوبصورت توازن ہے. باپ کہہ چکے تھے کہ قال بقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقت، اور ساتھ اندیشہ یہ بھی تھا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میں کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اللہ کے کسی حکم سے روک نہیں سکتا، یعنی تم دروازے سے نہ جم کٹھے جم خان، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن پھر بھی جو ہونے والی بات ہے وہ ہوگی. اور یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ پوری کوششیں کرتا ہے اور اس کے بد نتائج کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتا ہے. پھر 78 سے 82، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنجامین کی جدائی کا صدمہ، چوٹ والے ہاتھ پہ دوبارہ چوٹ لگ جائے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہاتھ صحیح تھا اور چوٹ لگ گئی، درد اس میں بھی ہوئی. یوسف کی جدائی بھی بہت جان لیوا تھی، لیکن جب ایک دکھے ہوئے دل کے اوپر پھر دوسرا دکھ پڑ گیا تو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے انسانی معاملات میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عموماً پچھلے سارے فوت شدگان بھی یاد آ جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں اور انہی کی باتیں پیش کرنے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 83 سے 87 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل ہے، اور کس خوبصورت انداز سے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے ये कहते हैं कि काला बल सब वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, यानी दुख भी है, सदमा भी है, और दो तकलीफें होती है ना, एक तो तकलीफ बाकी तकलीफ है, लेकिन फिर ये कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो इस तरह की डबल कैफियत जब हो जाए तो फिर खामोशी ही बेहतर होती है। फिर आयत 88 से 93, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हकीकत जाहिर कर दी, जब भाई बिल्कुल ही सदका लेने वाली कैफियत में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, और जी नबी बिदात मुस्जातिन फौफिलनल कई लव तसद्दक़लैना, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे नरम दिल शख्स का दिल भी पसीज गया, और फिर उन्होंने सारी हकीकत बताई शर्मिंदा किए बगैर। विन विन, कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं किया, लेकिन शैतान था जो तुम्हें इस तरह की चीज़ें करवा गया तुमसे, तो लिहाजा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहते हैं हल अलिम तो मा फाल तुम भी यूसुफा वाकी ही जन तुम जाहिलून। मुखालिफ को शर्मिंदगी से बचाना चाहिए, चाहे वो अपने भाइयों के ताल्लुकात में कोई खराबी का वजह बनी हुई है या कोई गैरों के साथ। जब हम दूसरे को शर्मिंदा करते हैं, देखा तुम्हें मैंने कहा था, तुमने ये किया वो किया, तो बस दफ़ा फिर अगला आपकी बात से कायल तो हो जाता है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं रहती। तो दिलों में जीने का राज क्या है कि आप विन विन की पोजीशन पर रहें, आप भी जीतें तो मैं भी जीतूँ, शेक हैंड कर ही लेते हैं दोनों तरफ के कैप्टन्स, एक हारने वाली टीम है तो एक जीतने वाली टीम है। फिर 94 से 98 में हम देखें टॉपिक है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई लौट आई, कैसे कमीज देखी थी खून से लुथड़ी हुई, उस दिन से रोना शुरू हुआ होगा और आज तक रो रो के आंखें ही सफ़ेद हो गई, जुबान पे कुछ नहीं कहा, लेकिन वब यदतई ना हुमिनल हुस्नी वहुआ कजीम थे, लेकिन अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है तो सदमा दुख गम दूर हो जाता है और फिर उनको अल्लाह ताला ने बिनाई भी लौटा दी। आयत 99, बनी इसराइल की मिस्र में आमद, कैसे फिर सबको बुला लिया गया और वो सारे शाही मेहमान बनकर वहाँ पहुँचे और फिर कितना ही अरसा वहाँ रहे इज्जत के साथ, लेकिन बाद में अपनी हरकतों की वजह से दोबारा फिर वक्त के हुक्मरानों के हाथों में आए और फिर वहाँ से उनको बहुत ही बुरे हाल में निकलना पड़ा। आयत 100, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसीन ख्वाब की ताबीर, वरफ़ा बबई अलल अर्शी वखर्रु लहू सुज्जदा وقال يا بني هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي। कितने साल लगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को सच होते हुए, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अंदाज़ कितना खूबसूरत है, ना तो कोई बड़ाई, ना कोई अपनी खूबियाँ, ना कोई ढेंगे मारने वाला अंदाज, बल्कि बड़े प्यारे अंदाज से नेगेटिविटी को ओवरलुक करते हुए जेल में जाने का नहीं लेकिन जेल से निकलने का जिक्र किया, कुएं में गिराए जाने का नहीं उससे निकलने का जिक्र किया, और इसी तरह भाइयों को शर्मिंदगी से बचाते हुए शैतान की तरफ उस बात को डाल दिया। मुहसिनीन ऐसे ही होते हैं। आयत 101, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज दुआ, जब सब कुछ मिल गया दुनिया के लिहाज से तो अब अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहते हैं, रब्बी कदात ऐतनी मिनल मुल्क की, देखिए पहली नेमतों का जिक्र करेंगे ना, फिर अगली जल्दी मिलेंगी इंशाल्लाह। वालम तनी मिन तावील अहादीस फातिर अस्समावाती वलअर्द, ये अल्लाह ताला की सिफत का अंदाज है, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, यहाँ तक अभी सिर्फ पिछली नेमतों का इकरार है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ है, अब तवफ़नी मुस्लिमम वल्हिकनी बिस्सालिहीन। असल दुआ के ये दो लफ्ज़ हैं और दोनों ही दुआएं कितनी प्यारी प्यारी हैं कि अल्लाह अभी तक तो मुस्लिम रहा, अभी तक तो तेरा मती फरमा बरदार था, अब ऐसा ना हो कि आगे जाके किसी तरफ से बहक जाऊँ, तो लिहाजा मुझे मरते दम तक मुसलमान रखना और मुझे अच्छे लोगों का साथ देना, यानी असल में तो अब अल्लाह ताला से मुलाकात की का वक्त करीब आने वाला है, हर नबी दुनिया से जाने के करीब, इसी किस्म की बात और ऐसी दुआएं ही मांगते हुए देखते हैं अल्लाह ताला हमें भी मरते ही अपना दीदार करवाए और अपना साथ अता फरमा दे। आयत 102 से 105, हक वाजे हो जाने के बावजूद भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, ये लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वीक पॉइंट है ये लोगों का, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, मानते कोई नहीं, यानी आईने में जो हस्ती दिखती है वो नहीं आपकी बात मानती, दूसरे चाहे जितनी मर्जी मान लें। तो फमाक सरुन्नासि वलो हरस तभी मोमिनीन, और ख़ास तौर पे जो शिरक वाली आयत है, वमा यूमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, तो हमेशा अपने अकायद को छान फटक लेना चाहिए, अंदर से झांक झांक कर देखिए, जैसे छलनी लगा के देखना ना कि कहीं जाहिर या बातिन में मेरे किसी कॉल या मेरे किसी फेल में शिर्क तो नहीं है, क्योंकि शिर्क की मौजूदगी ऐसे ही नहीं गुजरने देगी पुलसरात से। जैसे सामान में कोई नाजायज चीज़ हो ना, तो आखिरी वक्त तक धड़का लगा रहेगा कि कहीं भी मुझे नहीं रोकेंगे, बल्कि मेरा सामान भी उतरेगा और जेल में भेज देंगे। तो हमेशा शिर्क से अपने आप को पाक रखना चाहिए। शिर्क फ्री नामा अमाल होगा, बहुत उम्मीदें अल्लाह से। कतरा भी शिर्क आ गया तो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, बैन किया जा सकता है, आपका पेपर वापस लिया जा सकता है, आपको उस मुल्क से डिपोर्ट किया जा सकता है जिसका नाम जन्नत है। फिर आयत 108, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा दावत इलल्ला, यानी जो काम सारी ज़िंदगी आपने किया वही आज आपको मुझे भी करना है। कुल हाज़िही सबील यदू इलल्ला अला बसीरतिन व अना व मन इत्तबानी बस सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। तो क्या पता चला कि लोगों को पूरे यकीन के साथ बुलाइए, अदू इलल्ला है, अल्लाह की तरफ बुलाना है, अपने नामों और अपने किसी और मोटिव्स की तरफ नहीं बुलाना। आयत 109 से 110, तमाम रसूल इंसान ही थे। आज तक ये मसला रहा, मक्का वालों का भी यही इशू था, तो अल्लाह ताला ने बात ही सारी क्लियर कर दी कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा। तो इन झगड़ों में पढ़ने की बजाय ये देखो कि वो पैगाम क्या देकर चले गए। और फिर आखिरी आयत 111 कुरान पाक के वाक्यात में दरसे इबरत है, इस इबरत लेंगे तो फ़ायदा होगा। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल अलबाब। तो कुरान पाक देखिए कि फ़िक्शन की किताब नहीं है, इबरत की किताब है। पूरी सूरत यूसुफ गुजर जाती है, और कहीं ना यूसुफ जुलेखा की शादी का जिक्र है, ना यूसुफ के हुसन यानी हुसन यूसुफ का जिक्र है। और हम किन चीज़ों में पड़े रहते हैं इन सूरतों के मुतल्लिक। तो क्या सीखा हमने कि पूरी सूरत पढ़ने के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम का बातनी हुसन दिख रहा है, कैसे भाइयों के साथ एहसान करते हैं, कैसे बाप के लिए इसबाब मुहैया करते हैं, कैसे फिर उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने घराने को तख्त पे बिठाते हैं, फिर कैसे अपने कबीले के लोगों को मदद देते हैं। तो हमेशा दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश करते रहना, यही मुहसिनीन का अमल होता है। फिर आयत 53, बुराई से बचाओ अल्लाह ही के फजल से मुमकिन है। यहाँ से अब हम चंद हिदायात लेते हैं सीधा सीधा आयतों को देख कर। तो पहली ही आयत है जो पारे में, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन रब्बी गफूर रहीम। और मैं अपने नफ्स को पाक साफ नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि जिस पर मेरा परवरदिगार ही रहम करे, यकीनन मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत को समझना है तो आपको अगर वक्त मिले तो DQ 2020 का यही पारा यानी पारा 13 पढ़ लीजिए। पूरे पारे के अंदर थीम ही नफ्स के फितने था। हम चूंकि उसमें दौरे हाजिर के फितने कर रहे हैं, तो फितनों में बहुत बड़ा फितना ये कि आज हम नफ्स हमारा की सुनने लग गए। और नफ्स की तीन कैफियत क्या कैसे है, अगर आप सिर्फ उसके थोड़े से गो थ्रू के साथ स्लाइड्स को ही देख लें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आपको ये मिलेगा, फेसबुक पे भी है, वेबसाइट पे तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा इंशाल्लाह। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमारे नफ्स के शर से बचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे से पहले जो दुआ मांगा करते थे, आउज़ु बिल्लाह या नाउज़ु बिल्लाह ही मिन शुरूरी अनफुसीना, अल्लाह हम अपने नफ्स के शुरूर से तेरी पनाह में आते हैं, क्योंकि नफ्स जो है ना इसकी जितनी इज्जत करें ये आपको उतना बेइज्जत करवाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप उस मेहमान के बारे में क्या कहेंगे कि जिसकी आप जितनी इज्जत करें वो आपको उतना ही जलील करें, आप जितनी उसकी ऑनर करें वो आपको उतना ही पीछे डाल दे। तो फरमाया कि वो तो बड़ा बुरा मेहमान है। तो फरमाया ये आपका नफ्स इसी किस्म का मेहमान है, तो इसको दबा के रखिए, इसको घूरियाँ डालिए। तरबियत इत्फाल में भी ये बड़ा अहम नुक्ता है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों पर सख्ती करते थे, बच्चे बहुत ही डरे हुए और दबके भी होते थे और टैलेंटेड भी होते थे। जब से ये बातें कहती ना कि कुछ कहना नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, और अब माँ बाप कुछ कह दें तो बहुत सारे हैं उन बच्चों की मदद करने वाले, और बल्कि चाहें तो उनको ले भी जाएंगे कि आओ तुम्हारे तुम्हें जुल्म से बचाएं। तो याद रखिए ये फितरत के ख़िलाफ़ है। फितरत का तकाजा यही है कि आप बच्चों को बिल्कुल इस तरह से पालिए कि उनको खौफ भी हो और उनके अंदर खूबसूरत तरीके से अपने वालदैन की इज्जत भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, जो पैदा करने का जरिया बने, जो पालते हैं, क्या उनको इतना हक नहीं है कि वो आपके बारे में कोई हक ना रखें। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे बहुत कंट्रोल्ड हैं। हल्का सा डांट देना ही काफ़ी होता है बाज़ औक़ात। आप ये ना सोचिए कि बच्चों को नहीं पता चलता, उनको बहुत कुछ पता चलता है। और ज़रूरत है इस बात की कि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर अपने आप को गहरा करते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके बच्चों के दिलों में भी फिर आपकी मोहब्बत डालेगा। बस वो माँ बाप डर जाते हैं अपने बच्चों से, नहीं, बच्चे हैं ना, फिर बाहर जाके कुछ कह देंगे। तो देखिए, ऐसा रेपो बनाइए, ऐसा खूबसूरत अंदाज इख्तियार कीजिए कि जिसके बाद हकीकत में आपके बच्चे आपके साथ मोहब्बत भी करें और डिसिप्लिन भी रहें। फिर इसके बाद अगली आयत देखिए, 76 है, तदबीरे इलाही और तसव्वुरे दीन। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी तदबीर की कि जिसकी वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को, पहले बिन्यामीन और फिर बाकियों और फिर ख़ानदान को भी मिस्र में सेट कर सके। ये भी एक तरतीब होती है। जैसे आज भी देखिए, वीज़ा प्रोसेस होता है, पहले एक को बुलाएं फिर दूसरों को, एकदम तो सबको नहीं बुला सकते थे। तो ये आयते फबदा बियाओ यतीहिम कब्ल विया यखी सुम मस्तखरज हामिम विया यखी कदालिका केदना ली यूसुफ। ये है अल्लाह की तदबीर। तो बस जब हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की ये चीज़ें चल रही होती हैं कि हमें उस वक्त उसकी हिकमत नहीं समझ आती, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें हिकमतें होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि चेन ऑफ कोइंसिडेंसेस वगैरह, तो इन चीज़ों के पीछे झांक लेना चाहिए कि आखिर अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। शिकवा गिला नहीं करना चाहिए, हालात जैसे भी हों बिलाखिर खैर ही निकलेगी। फिर आयत 106, ईमान वालों की अक्सरियत शिर्क कर बैठती है, होती नहीं है, कर बैठती है। ये ऐसी है जैसे चलते चलते कभी पाँव फिसल ही जाता है। वमा यूमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून। इसके एक एक लफ्ज़ को अलग करके देखिए, आपको अंदर से मुसलमान दिखेगा जो शिर्क कर रहा है। हम अक्सर कहते हैं मुसलमान हो गया, अब शिर्क कहाँ रहा, बल्कि बाज़ कहते हैं मुसलमान हो के शिर्क करो ताकि बच जाओ। हाँ, फलां चूँकि मुसलमान नहीं है तो उसको पूछा जाएगा, और वो तो ऐसे पूछते हैं और इसको पूछते हैं। तो याद रखिए, आप किसी को कब्र पे जाकर ना भी पूछें, माथा ना भी टेकें, लेकिन शिर्क फिल हुक्म हो जाता है, शिर्क फिल दुआ हो जाता है। डर किसी और का, खौफ किसी और का, उम्मीदें किसी और से, और कुछ अनजाने में ऐसे तो हम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये होगा, कौवा दीवार पे आ गया तो ये होगा, पीछे से ना बुलाना, आगे से ना बुलाना। आजकल इतने मासूम सवालात यकीन करें लोगों की तरफ आते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ। किसी ने कहा शाम को झाड़ू नहीं लगाना, किसी ने कहा कि जी आटा नहीं गिराना, ये नहीं करना, किसी ने कहा इस वक्त शावर नहीं लेते, नाखून नहीं काटते। क्या बातें करते हैं आप इस पढ़े लिखे दौर में, जबकि अक्ल समझ इतनी आम हो चुकी है, लोग इस तरह की बातें करके खुद को परेशान करते हैं। फिर आगे देखिएगा आयत नंबर 108, इत्तबाए रसूल का तकाजा दावत इलल्लाह कुल हाजी सबील यदु इलल्लाह अला बसीरत ना व मन इत्तबातनी व सुबहान अल्लाह ही व मा अना मिनल मुशरिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ पूरे यकीन और एतमाद के साथ, मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरोकार भी। ये कौन है? अल्लाह आपको मुझे इसमें डाल दें। अल्लाह के नबी कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जी, ये काम सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा लोगों को अल्लाह आपकी तरफ बुलाने का और इला सबीली रब्बी का, बल्कि मेरी उम्मत के बहुत से लोग करेंगे। तो खुशबख्त हैं वो लोग जो आज इस रास्ते में लगे हुए हैं, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये दुआ कीजिए कि पहले अपने अकायद क्लियर हो जाए, इल्म पूरा हो जाए, तो उसके बाद फिर हम दूसरों को देने वाले बने, वरना ऐसा ना हो कि नासमझी में हम शिर्क ही फैला कर आ जाएं। तो क्या खूबसूरत सूरत थी यूसुफ, इसको सही तरह पढ़िए। दुल्हनों पे फूकने वाली सूरत नहीं है ये, प्रेग्नेंट औरतों के पढ़ने वाली सूरत नहीं है, बल्कि ये हर जवान होते हुए बच्चे बच्ची की सूरत है, कि जिसको माशरे की बुराई भी दिखे। और बच्चियां जब मैके से ससुराल में जाती हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो कुछ बच्चियां रिश्तों को टैकल कर नहीं पाती और जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से हिदायत लेने वाला बनाए।